अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है देशद्रोही। पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। रोज ही 10-20 की हत्या के समाचार सुनाई पड़ते थे। हर एक के हृदय में दहशत ने स्थान बना लिया था। सुबह काम पर गया आदमी शाम जब तक घर लौटकर नहीं आ जाता, घर वालों के हृदय सूली पर चढ़े रहते। शाम जब वो सही सलामत लौट आता, तभी उनके चेहरों पर संतोष व्याप्त होता। 2-4 दिन की बात होती तो आदमी घर में घुसा रहता, पर यहाँ तो रोज का किस्सा था। शुरू में आतंकवादियों के ध्येय बुरे नहीं थे, उन्होंने कई सुझाव दिए थे। वो सरकार से उन्हें मनवाना चाहते थे और जब ये कार्य नहीं होता तो खून की होली शुरू हो जाती, ऐसे में गुंडों की बनाती। वे आपसी रंजिश के कारण हत्याएं करते और आतंकवादियों के माथे ये इल्जाम थोप देते। किसी की भी जान माल की खैर नहीं थी। ऐसे समय में जब लोग हताश हो गए थे, सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजेंद्र सिंह ने कितने ही लोगों को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। वो एक कर्तव्यनिष्ठ देश प्रेमी थे। पंजाब की सौंधी मिट्टी में वो खेल कूद कर बड़े हुए थे। उनके पिता की बचपन में ही मौत हो चुकी थी। माँ ने मेहनत मजदूरी करके उन्हें तथा उनके छोटे भाई जोगिंदर सिंह को पाला था। एक दिन जब माँ ने सूखी रोटी नमक के साथ जोगिंदर सिंह को खाने को दी तो वो चीख कर बोला, माँ तुम और भैया जानवरों की जिंदगी जियो, मैं अभावों के बीच अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे पैसा और ऐश की जिंदगी चाहिए, चाहे मैं उसे कैसे भी हासिल करूं। ये कहकर वो गुस्से से पैर पटकता हुआ चला गया। वर्षों बीत गए, माँ तथा राजेंद्र सिंह ने उसे बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। तभी से उसने माँ के चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी। सब सुख उसने माँ को दे रखे थे, पर भाई को वो कहाँ से लाता। माँ के चेहरे पर उदासी ने अपना घर बना लिया था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ जोगिंदर अब नहीं आएगा, आना होता तो क्या वो इन 6 सालों में तुमसे मिलने नहीं आता? लगता है आतंकवादियों ने उसकी हत्या कर दी है। माँ बिलख कर बोली, मेरा मन कहता है कि मेरा जोगिंदर जिंदा है और वो एक दिन जरूर माँ से मिलने आएगा। पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजेंद्र सिंह ने अपने मधुर व्यवहार से कितने ही आतंकवादियों को इस गुनाह की दुनिया से निकाला था। इन आतंकवादियों ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया था। राजेंद्र सिंह बंदूक से ज्यादा प्यार से काम निकालने के पक्ष में थे। वो आतंकवादियों से घृणा नहीं करते थे। वो जानते थे कि भूखे पेट आदमी निकृष्ट काम करने को भी तैयार हो जाता है। पड़ोसी देशों ने इससे लाभ उठाया। उन्होंने पैसों का लालच देकर उनसे अपने ही भाइयों की हत्याएं करवाईं। पैसे के बल पर उन्होंने अपना ईमान खरीद उन्हें देशद्रोही बना दिया था। अपनी कार्यकुशलता और मेहनत से राजेंद्र सिंह ने पुलिस महकमे में सबका मन जीत लिया था। उस देश प्रेमी का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि एक दिन वो आतंकवाद का अंत करके रहेंगे, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। ऐसे देश प्रेमी कर्तव्यपरायण ऊंचे अधिकारी पर आतंकवादियों की गिद्ध सी दृष्टि जमी थी। वे उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। कई बार राजेंद्र सिंह पर वे जानलेवा हमला भी कर चुके थे, पर हर बार वे असफल रहे। राजेंद्र सिंह हमेशा सतर्क रहते थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटा राजेंद्र मुझे पिस्तौल चलाना सिखा दे। राजेंद्र सिंह ने हंसकर कहा, माँ मेरे रहते तुम्हें पिस्तौल की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। माँ ने कहा, बेटा मुझे अपनी हिफाजत के लिए चाहिए, जब तू नहीं रहता उस समय वो पिस्तौल मेरी सहायता करेगी। राजेंद्र सिंह ने कहा, ठीक है माँ, कल मैं तुम्हें पिस्तौल लाकर दूंगा और उसे चलाना भी सिखा दूंगा। दूसरे दिन से उसने माँ को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। एक दिन माँ यकायक बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप दिल्ली जाकर इनका परीक्षण करवा लें तो अच्छा रहेगा। माँ को लेकर राजेंद्र सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रात्रि का समय था, रेलगाड़ी तेज गति से भागी जा रही थी। सभी यात्री गहरी नींद में सोए पड़े थे। उसी समय बंदूक की आवाज और लोगों की चीख पुकार से पूरा कंपार्टमेंट गूंज उठा। सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजेंद्र सिंह और उनकी माँ उठ बैठे। देखते देखते 3-4 आतंकवादी उनके केबिन में घुस आए। माँ ने राजेंद्र सिंह से कहा, तू मेरे पीछे बैठा रहेगा, अगर तू बाहर आया तो मैं इसी पिस्तौल से अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर कनपटी से पिस्तौल लगाकर वो बोली, तू पंजाब का शेर है, तेरी जान बहुत कीमती है, मरते मरते भी मैं तेरी रक्षा करूंगी। तेरे जैसे बहादुर और देश प्रेमी पर हजार जाने कुर्बान है। ये कहकर उन्होंने पिस्तौल आतंकवादियों पर तान दी। राजेंद्र सिंह ने कहा, माँ ये समय ममता दिखाने का नहीं है, ये समय लोगों की जान माल की रक्षा का है। तू मुझे चूड़ियां पहनाकर बिठाना चाहती है। रोष तथा ग्लानी से उसका चेहरा लाल हो गया। माँ ने शांत स्वर में कहा, मेरे न रहने पर तुझे पूरा अधिकार होगा, तो जिस तरह चाहे इनसे निपट सकता है। आतंकवादियों के चेहरे काले कपड़े से ढके थे। माँ ने डर होकर बोली, पहले इस माँ पर गोली चलाओ, बाद में मेरे बेटे की तरफ आंख उठाना। माँ के हाथ में तनी पिस्तौल तथा उनका चंडी रूप देखकर थोड़ी देर के लिए आतंकवादी स्तब्ध खड़े रहे। यकायक एक आतंकवादी गिरते गिरते बचा। उसका चेहरा फक पड़ गया, पर वो जल्दी ही संभल गया। वो आतंकवादी हंसकर बोला, सच में आप वीर माता हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे। अपने साथियों को इशारा करके वो ट्रेन से उतर गया। माँ ने राजेंद्र सिंह की तरफ भेद भरी दृष्टि से निहारा। 6 साल पहले जो आवाज माँ को गुदगुदा देती थी, क्या चेहरे को ढके रहने पर उसे पहचानने में वो भूल सकती थी? एक बार ममता ने जोर मारा, फिर कर्तव्य ने ममता को दूर ढकेल दिया। बगल में बैठे कर्तव्य निष्ठ तथा देश प्रेमी बेटे की वो माँ है, कोई मामूली स्त्री नहीं। राजेंद्र सिंह ने आंखों आंखों में माँ से प्रश्न किया। माँ ने सिर हिलाया, वही था। माँ के हृदय में अंतर्द्वंद मचा था। एक तरफ कर्तव्य तथा देश प्रेम था, तो दूसरी तरफ पुत्र प्रेम उन्हें खींच रहा था। अंत में कर्तव्य ने बाजी मार ली। जिस दिन राजेंद्र सिंह दिल्ली से लौटे, उनके ऑफिस जाते ही एक लड़का एक पत्र माँ की तरफ फेंक कर भाग खड़ा हुआ। पत्र में केवल इतना लिखा था, आज रात 12 बजे मैं आपके दर्शन करने को आ रहा हूँ, किसी को पता न चले पत्र को जला देना। माँ का हृदय टूक टूक हो गया। आज वर्षों बाद वो अपने बेटे को सीने से लगाकर उसका माथा चूमती, पर क्या वो उस देशद्रोही को छोड़कर अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगी? जिस देश की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों की बलि दी है, क्या वो एक देशद्रोही बेटे की बलि नहीं दे सकती? वो जानती थी कि जिंदगी में परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए आत्मिक बल की जरूरत पड़ती है, और उन्हें इस समय इसी बल का प्रयोग करना चाहिए। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की एक रेखा खींच गई। बेटे राजेंद्र के लौटते ही उन्होंने भरी आंख से वो पत्र उसे पकड़ा दिया। पत्र पढ़ते ही राजेंद्र सिंह चीहूक उठा। वो जानता था कि ये पत्र देते वक्त उसकी माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी। उसने गमगीन आंखें उठाकर माँ से पूछा, क्या कहती हो माँ? माँ ने शांत स्वर में कहा, उसे पकड़ने का पूरा इंतजाम कर ले। राजेंद्र सिंह का हृदय चीख कर कह रहा था, वर्षों बाद आज तुम्हारा भाई आ रहा है, क्या तुम उसे पकड़ पाओगे? उसने गर्दन झटक कर कहा, नहीं नहीं, मैं अपने कर्तव्य से नहीं हटूंगा। भाई जोगिंदर सिंह को पकड़ने की उसने पूरी तैयारी कर ली। नियमित समय पर जोगिंदर सिंह धीरे धीरे माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में घुसते ही उसने देखा माँ की आंखों से टपा टप आंसू गिर रहे हैं। उसने आगे बढ़कर माँ के चरण स्पर्श किए, फिर एक छोटे बच्चे के समान वो माँ से लिपट गया। माँ ने उसे कसकर सीने से चिपका लिया। यकायक माँ की सिसकी की आवाज सुनकर उसने माँ का चेहरा देखा। माँ की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। जोगिंदर सिंह ने प्यार से माँ का चेहरा उठाकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ तुम्हारे ये आंसू खुशी के नहीं बल्कि दारुण दुख के दिखाई दे रहे हैं। बोलो माँ, क्या बात है, मुझे पाकर भी तुम इतने आंसू क्यों गिरा रही हो? माँ ने अश्रुपूरित नेत्रों को उठाकर कहा, बेटा पीछे देख। जोगिंदर सिंह ने पीछे मुड़कर देखा, वो चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ था। जोगिंदर सिंह ने रोष से माँ की तरफ देखते हुए व्यंग से कहा, माँ रेल में भाई को बचाने के लिए मैंने तेरा चंडी रूप देखा था, उसी रूप की कल्पना करके मैं बेखटके तुझसे मिलने चला आया था। कहाँ गया तेरा वो चंडी रूप, कहाँ गई वो ममता भरी दृष्टि? कहते हैं माँ अपने सभी बच्चों को एक निगाह से देखती है, फिर ये भेदभाव क्यों? माँ बोली, सुन सकेगा जोगिंदर? वो देश का एक बेशकीमती हीरा था जिसे मैंने अपने आंचल में छुपाया था, उस हीरे को बचाने के लिए एक जान तो क्या, अगर मेरी हजार जानें भी कुर्बान होती तो मैं कुर्बान कर देती, पर तू मेरा बेटा नहीं, देश के लिए एक कलंक है जिसका मिट जाना ही देश के लिए हितकारी होगा, वरना कौन माँ अपने बेटे की हत्यारिन होगी। तू देशद्रोही है, किसी भी भारतवासी के लिए पहले उसका देश होता है, बाद में संतान की ममता। मैंने तुझे देश की रक्षा के लिए जन्म दिया था बेटा, गद्दारी के लिए नहीं। एक बार भरी आंखों से उसने बेटे को निहारा, इसमें ममता, रोष, क्लानी सबके मिले जुले भाव निहित थे। फिर वो भागकर दूसरे कमरे में घुसकर पलंग पर कटे वृक्ष सी गिर पड़ी। कड़े पहरे पर जोगिंदर सिंह को हवालात में बंद कर दिया गया। उसको पकड़ने वाले को 50,000 का इनाम सरकार ने रखा था। वह आतंकवादियों का मुखिया था। न जाने कितनी डकैतियां और हत्याएं उसने की थीं। उसके पकड़े जाने की खबर सुनकर लोगों ने संतोष की सांस ली। जिस दिन अदालत में जोगिंदर सिंह का मुकदमा शुरू होने वाला था, अदालत में तिल रखने का स्थान नहीं था। अदालत के बाहर अपार भीड़ इकट्ठी थी। भीड़ इसलिए भी थी कि एक माँ ने अपने बेटे को पकड़वाया था। उस देश प्रेमी वीर नारी की एक झलक पाने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। कितने ही लोग हाथों में फूलों की माला लिए उस देवी के गले में पहनाने को आतुर थे। माँ ने जज साहब से पूछा, क्या मैं 2 मिनट के लिए अभियुक्त के पास जाकर बातें कर सकती हूँ? डरिए मत, मुझे कोई खतरा नहीं होगा। जज साहब ने बड़े आदर से कहा, आप इसकी माँ हैं, आपने इसे पकड़वाया है, आपको पूरा हक है, आप जा सकती हैं। सभी की आंखें कर्तव्य की वेदी पर अपने पुत्र की बलि चढ़ाने वाली माँ पर केंद्रित थीं। माँ के लिए उनकी आंखों में अपार श्रद्धा निहित थी। माँ के चेहरे पर अपार शांति व्याप्त थी। कटघरे में बेटे के पास पहुंचकर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तेरे पास साइनाइड की गोलियां नहीं थी? एक करुण मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खिल गई। वो बोला, क्या माँ के पास आते समय साइनाइड की गोलियों की आवश्यकता पड़ती है? माँ ने शांत स्वर में कहा, जब बेटा अपने कर्तव्य का पालन न करे तो गोलियां जरूर रखनी चाहिए। एक बात और सुन ले बेटे, तू सोचता है मैंने तेरे संग अन्याय किया है, तो प्रतिकार भी मैं ही करूँगी। बेटे से चुपचाप बातें करने के पश्चात माँ ने जज साहब की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे इनाम देंगे, मेरी शोहरत का डंका भी लोग पीटेंगे, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़वाया है, पर मैं किसी का दान नहीं लेती, बल्कि दूसरों को इनाम देना ही मेरा ध्येय रहता है। मैं आज आप सबके सामने अपने बेटे को इनाम देती हूँ, वो इनाम जो आज तक किसी माँ ने अपने बेटे को नहीं दिया होगा। बेटे की तरफ वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखते हुए माँ ने पूछा, तुझे डर तो नहीं लग रहा है? जोगिंदर सिंह के मुक्त हास्य से अदालत गूंज उठी। वो बोला, कहीं बेटा भी माँ से डरता है? यकायक पिस्तौल की गोली से पूरा हॉल गूंज उठा। लोगों ने देखा जोगिंदर सिंह कटे वृक्ष सा गिर पड़ा। उसके सीने में गोली लगी थी। अभी लोग कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि दूसरी गोली की आवाज से सभी चीख उठे। माँ ने अपने को गोली मार ली थी। ये वही पिस्तौल थी जिसे उन्होंने अपने बेटे राजेंद्र सिंह से मंगवाया था। उसे चलाना भी बेटे ने ही सिखाया था। क्या वो जानता था कि यही पिस्तौल उसके भाई और माँ की जान ले लेगी? जज साहब, माँ ने अटकते अटकते कहा, मैं जानती हूँ मेरे बेटे की जुबान खुलवाने के लिए उसे असहनीय पीड़ा दी जाएगी। वो शायद तब भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। मैंने इसे आज उन कष्टों से मुक्त कर दिया है। इसके सिवा मेरे पास इसे देने को कुछ नहीं बचा था जज साहब। फिर बेटे की तरफ भरी आंखों से देखकर वो बोली, बेटा अपनी धोखेबाज माँ को माफ करना। आज से शायद कोई बेटा अपनी माँ का विश्वास नहीं कर पाएगा। जोगिंदर सिंह ने प्यार भरी दृष्टि से माँ को निहारते हुए कहा, माँ मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, जो उपकार तूने मेरे संग किया है वो सिवा माँ के कोई नहीं कर सकता। जो असहनीय कष्ट मुझे जेल में दिए जाते, उनसे तूने कितनी सरलता से मुझे मुक्त करा दिया है। तू वीर माता है, मुझे तुझ पर और भाई पर गर्व है। सचमुच मैंने पैसों के लोभ में पड़कर अपने देश तथा देशवासियों से गद्दारी की थी। उसकी सजा तेरे द्वारा मुझे मिली, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या होगा? उसने मुस्कुराते हुए माँ की तरफ निहारा। उन आंखों में अथाह प्रेम तथा श्रद्धा भरी थी। उसके हाथ माँ के चरणों की तरफ बढ़े। घसीटते हुए माँ ने उसे अपने कलेजे से लगाकर उसका माथा चूम लिया। पूरी अदालत स्तब्ध इस दृश्य को देखती रही। सभी की आंखें नम थीं और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजेंद्र सिंह माँ और भाई के शव पर गिरकर बिलख उठे। आज वर्षों बाद भाई को पाकर उन्होंने भाई के संग संग माँ को भी खो दिया। विधि का विधान कौन जान पाया है।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।